مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ کشمیر میں بھارتی افواج پر خود کش حملے سے ہونے والی ہلاکتوں پر ہے، جس کے بعد بھارت نے پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم پلوامہ واقعے کے بعد پاکستان کے موقف پر بھی بات کریں گے کہ اگر بھارت انہیں کسی بھی قسم کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ یہ حملہ پاکستانی سرزمین سے ہوا تھا تو وہ انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہم جیش محمد کے کردار کے علاوہ کشمیر میں مزاحمت کاروں کی صورتحال پر بھی بات کریں گے، اور یہ پورا گھنٹہ کشمیر کی صورتحال پر ہے، لہذا ہم آپ کو بھی سنیں گے۔ آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں کشمیر سے جوائن کیا ہے، سری نگر سے کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے، جبکہ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان میم افضل ہیں، جو اپنے ملک کی طرف سے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کو اسی حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل۔
منگل کو ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی فوج کے سری نگر میں مقیم کور کمانڈر کمل جیت ڈلون نے کہا کہ اس خود کش حملے کو انجام دینے کے سلسلے میں جیش محمد کو پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی فعال حمایت حاصل رہی۔
That convoy attack was carried out by جیش محمد of Pakistan and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس واقعے میں ملوث بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مقیم جیش محمد کی قیادت کا صرف 100 گھنٹے کے اندر اندر کام تمام کیا گیا۔ وہ پیر کو ضلع پلوامہ کے پنگلنا علاقے میں پیش آئی اس جھڑپ کا حوالہ دے رہے تھے جس میں بھارتی عہدیداروں کے دعوے کے مطابق جیش محمد کے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ عہدیداروں نے ان میں سے ایک کی شناخت مقامی نوجوان ہلال احمد کے طور پر کی ہے اور کہا ہے کہ انکاؤنٹر کی جگہ سے حاصل کیے گئے قابل اعتراض مواد کی جانچ کے دوران ان کے بقول دو دوسرے دہشت گردوں کی شناخت پاکستانی شہریوں کامران عرف فہد اور رشید عرف غازی عرف لقمان کے طور پر ہوئی ہے۔ بھارتی فوجی افسر نے بتایا کہ مارے گئے ان عسکریت پسندوں کو پاکستان میں موجود جیش محمد کی قیادت استعمال کر رہی تھی اور انہوں نے ہی خود کش حملے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل درآمد کرایا تھا۔ اس جھڑپ میں ان 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کے علاوہ بھارتی فوج کا ایک میجر، 3 سپاہی، ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری بھی ہلاک ہوئے تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈلون نے کشمیری ماؤں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ کریں۔
Through you, I would request all the mothers of Kashmir to please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir,
اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارتی کشمیر میں جاری عسکری تحریک کے ہمدردوں کو شدید وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جو کوئی بھی شخص بندوق اٹھائے گا اس کا خاتمہ کیا جائے گا، سوائے اس کے جو حفاظتی دستوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر خود کو قانون کے حوالے کرے گا۔ فوجی افسر نے مزید کہا کہ خود کش حملے میں ایک خاص قسم کا کار بم استعمال کیا گیا اور یہ واقعہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بڑی مدت کے بعد پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کی کارروائیوں سے نمٹنے کے لیے بھارتی فوج تمام آپشنز کو کھلا رکھے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور یہ جو خود کش حملہ ہوا تھا چند روز پہلے، جس میں اتنے سارے بھارتی افواج ہلاک ہوئے، اس کے لیے ہم ڈاکٹر شیخ شوکت حسین کی طرف جاتے ہیں، کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر شیخ، آپ بتائیے، عادل دار جنہوں نے یہ حملہ کیا غالباً وہیں سے تعلق رکھتے تھے، کشمیری نوجوان، ان کے بارے میں بتائیے، وہ کس چیز سے متاثر تھے اور اتنا سارا اسلحہ جو استعمال کیا گیا، کچھ پتہ چلا ہے یہ کہاں سے آیا ہوگا؟
اصل میں عادل دار کا جو ویڈیو آیا سامنے وہ تو کشمیری ہی تھا اور مقامی تھا پلوامہ ہی کا، لیکن صرف اسی بیس پر یہ کنکلوڈ کرنا، اس نتیجے پر پہنچنا کہ یہ حملہ جو ہے اس میں وہی شامل تھے یا کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، اتنا آسان نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں چپے چپے پر سیکیورٹی کے انتظامات رہتے ہیں، ایجنسیز ہیں، اور وہ ہر اس شخص کے ساتھ نمٹتی ہے جس کے پر بھی شبہ ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی ملٹنسی میں شامل ہے یا مظاہروں میں شامل ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سب سیکیورٹی ہوتے ہوئے ایسا حملہ کیوں ہوا اور کیسے یہ ممکن ہو سکا. بنیادی طور پر کشمیر میں مسلسل ایک سال سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور نوجوانوں کی ہو رہی ہے جو مزاحمت جوائن کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں فوج کے ایکشنز کے نتیجے میں وہ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. تو اس صورتحال سے یہاں ایک سفوکیشن اور ایک نوجوانوں میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا ہے، اور اسی سفوکیشن اور سختیوں کے نتیجے میں پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ایسی کاروائیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسے نوجوانوں کا مسلسل ایکشنز میں مارا جانا، ایسے اس انداز سے پیش کیا جا رہا تھا جیسے کوئی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، اور بھی افسوس، بلکہ جو ریاست کے موجودہ گورنر ہیں انہوں نے ایک مرتبہ ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایسی ہلاکتیں تو اس سے کئی گنا زیادہ یو پی بہار میں روز ہوتی. تو ایک بے اعتنائی سی اور ایک جن جذبات کی وجہ سے یہ ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کی طرف بالکل بے توجہی تھی، اور اس کا نتیجہ
جی جی. ڈاکٹر شیخ، ہم بھارت سے ایک نقطۂ نظر حاصل کرنا چاہتے ہیں. آل انڈیا کانگریس کے ترجمان میم افضل ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھارت کے سابق سفیر بھی رہے ہیں، اسمبلی کے رکن بھی. میم افضل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر اس وقت کیا تاثرات پائے جاتے ہیں سری نگر میں اس کے قریب پلوامہ کے اس حملے کے بارے میں، کیونکہ جیسے ہی یہ حملہ ہوا تو بغیر تحقیق کیے ہوئے بھارت نے اپنی انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھائیں. جی
ٹھیک ہے، پچھلے چار پانچ سال سے جو اس طرح کے دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتا دوں، کسی بھی چار سالوں میں، پانچ سالوں میں، ساڑھے چار پونے پانچ سالوں میں اتنی بڑی تعداد میں فوجی جوانوں کی شہادت نہیں ہوئی جتنی اس دور میں ہوئی ہے. یہ 448 تھی اور اب بڑھ کر کے 488 ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جس کے اندر سویلینس بھی اس کا شکار ہوئے ہیں ان کی تعداد 280 سے زیادہ ہے، اور میں نے 488 کہا، اب تو اور بھی بڑھ گئے، اس کے اندر پانچ لوگ اور بڑھ گئے، اس میں ایک سویلین ہے اور چار فوجی ہیں، تو یہ 492 سے بھی اوپر چلی گئی یہ تعداد. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو پلوامہ میں واقعہ ہوا ہے اس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے. لوگوں کے جذبات بہت ہی زیادہ برنگیختہ ہیں اور عام سڑکوں کے اوپر آج اس کی چرچا ہو رہی ہے. شاید جو طاقتیں اس کو انجام دیتی ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھارت کے اندر وہ خوف و ہراس پھیلا دیں اور یہ ثابت کریں کہ وہ کسی بھی حکومت سے زیادہ طاقتور ہے. میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ پاکستان کا ہی بتایا جاتا ہے، اور آج آپ نے ابھی اپنے تبصرے میں بات کہی کہ پاکستان کہتا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے یا فوراً انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھ جاتی ہیں. اگر پاکستان کی طرف نہ اٹھیں تو پھر کس کی طرف اٹھیں؟ کھل کر کے حریت کے لوگوں کو سپورٹ کرنا، ان سے بات چیت کی کوشش کرتے رہنا، ان کو بھڑکانا، اس طرح کے سارے کام پاکستان کی کہ ہاں جو بیٹھی ہوئی کچھ تنظیمیں ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں.
میم افضل صاحب, آپ اس کا ذرا سا ایک جواب سنیں. جو پاکستان بھی کہتا رہا ہے اور دنیا میں جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ, اور بلکہ امریکہ کے اندر جو میڈیا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب جو کچھ بھی مزاحمت ہو رہی ہے کشمیر میں وہ مقامی لوگ کر رہے ہیں. اس یہ جو واقعہ ہوا, تازہ واقعہ ہوا, اس میں آپ کے اپنے ایک انڈین کمانڈر نے کہا کہ جموں کشمیر ہائی وے کو زیادہ وسعت دینے کے لیے جو ایکسپلوسیوز استعمال کیے گئے تھے بہت ممکن ہے کہ عادل دار نے وہ ایکسپلوسیوز استعمال کیے, اس کا آپ کیا کہیں؟
دیکھیں, یہ میں معاف کیجیے گا, میں ڈپلومیٹ بھی رہا ہوں, بھارتی پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہا ہوں, اور بھی کئی ایسی پوزیشنز پر رہا ہوں جہاں مجھے سرکار کے باہر عوام میں کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں کشمیر بھی بہت آیا گیا ہوں. پچھلے الیکشن کے اندر میں اپنی پارٹی کی طرف سے کشمیر کا انچارج تھا. میں وہاں کے حالات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. کشمیری ہمارے دیش کا ایک اٹوٹ انگ ہے. میں صرف یہ نہیں کہتا ہوں کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, میں کہتا ہوں کشمیری مسلمان اور کشمیری تمام کے تمام وہ بھی ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اگر ان کو کوئی کھتی ہوتی ہے, یعنی کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو ہم کو بھی اس کی سخت تکلیف ہوتی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کشمیر میں یہ خامخواہ نہیں ہو رہا ہے. کشمیر کے لوگ بڑی تعداد میں بھارت کے حامی بھی ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بھارت کے حامی نہیں ہیں, بھارت کے خلاف ان کی گتیویتیاں یعنی ان کی سرگرمیاں رہتی ہیں. ابھی حال ہی میں دیکھا کہ موجودہ سرکار نے حریت کے 4-5 لیڈروں کو سیکیورٹی واپس لے لی. ایک ایک حریت لیڈر پر کئی کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس مہینے کے حساب سے. اور اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ آپ کا اتنا بڑا ریڈیو ہے جو ساری دنیا میں سنا جاتا ہے, کہ کشمیر کے اندر جو علیحدگی پسند لیڈرز ہیں ان کے بچے تو غیر ممالک میں پڑھتے ہیں, کوئی کہیں ڈاکٹر ہے, کہیں انجینئر ہے, لیکن کشمیر کے غریب عوام کے جو بچے ہیں ان کو ہمیشہ اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ان کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے, ان کو بھارت کے تمام قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے. تو اس کو کون سی حکومت ہے جو برداشت کرے گی؟ کیا پاکستان میں ایسا ہو تو برداشت کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پاکستان کھل کر کے کشمیر کی حمایت کرتا ہے اور کشمیر کی آزادی کی بھی بات کرتا ہے. کشمیر ایک ایسا بون آف کنٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان میں, جس پر بات چیت کا ماحول تقریباً ختم ہو چکا ہے. دونوں ملک اپنی اپنی بات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے دہشت گردی کو بڑھاوا دینا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کشمیر میں جو بھی کچھ کہنا چاہیے سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے ایک ہمدردانہ نظریہ رکھتا ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر اب کمزوری آتی جا رہی ہے. اس لیے کہ عام کشمیریوں کو اس کے اندر انوالو کیا جا رہا ہے اور عام کشمیریوں کو اس شورش کا چہرہ دکھا کر ان کو بھی بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں کشمیر کے لیے اچھی نہیں ہیں. کشمیر کے نوجوان آج پورے بھارت کے اندر الگ الگ یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ ہوا تو بہت سی یونیورسٹیز کے اندر ان کی جان کو خطرہ تک پیدا ہو گیا. وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, لیکن جذبات بھڑکانے کے لیے جو موجودہ سرکار ہے, ظاہر ہے وہ اس کا مزاج آپ کو بھی پتا ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. اس کی موجودگی میں یہ لوگوں کو بھڑکانا بہت آسان ہے, ان کا نام لے کر کے, ان کی آئیڈیالوجی کو لے کر کے بہت آسانی سے کشمیر کے لوگوں کے خلاف اور دوسرے طبقوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی جو کوشش اور ایک سازش جو ہے وہ بھی یہاں لگاتار چل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہیں گے کہ جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے دہشت گردی سے لڑنے کی. پاکستان میں آج عمران صاحب نے کہا ہے
میم افضل صاحب, ظاہر ہے آپ نے جو بات کی وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو بات ڈاکٹر شیخ شوکت حسین نے کی وہ یہ کہ بھارتی کشمیر کی جو بھارت میں جو افواج ہے उन्होंने भी जो मजालिम ढाए हैं उसकी वजह से भी एक रद्द अमल हुआ है। बाहर कैफ हम लोगों को भी सुनते हैं। हमें इस दौरान मारूफ शाहिद ने कॉल किया है कश्मीर से, खुशाब से मलिक रशीद अहमद ने और सिंध से शाह ने। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
मंगल को हमले
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पर जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहाँ?
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी मारूफ शाहिद कश्मीर से कुछ कहना चाहते हैं, जरा मुख्तसर बात।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मीर अफजल साहब से मेरा ये सवाल है, वाकई वो डिप्लोमेट है, बड़ी नरम गुफ्तगु कर रहे हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि जब किसी की आज़ादी सलब की जाए और आज़ादी जब मांगी जाए तो जो उसकी जान भी जाए और नस्ल खुशी की जाए तो फिर वहाँ ऐसे रिएक्शन पैदा होते हैं नहीं, तो आप क्यों यानी दुनिया को हकीकत से नहीं ना बलग रखना चाहते हैं? नहीं, वे कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, उनका हक है बुनियादी।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। मलिक रशीद अहमद खुशाब से जी बात कीजिए।
जी मीरजुल साहब, साहब की खिदमत में गुजारिश है कि ये दहशत गर्दी नहीं है वादी में, इट इज अ पब्लिक मूवमेंट विच इज सपोर्टेड बाय यूथ ऑफ मकबूजा कश्मीर।
और एहसन ने कॉल किया है। जी जी जी, एहसन ने कॉल किया है बन्नू से। जी बात कीजिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में ये जो सहाते हैं उनको क्यों नहीं छोड़ते हैं, जो न्यूट्रल सहाते हैं उनको छोड़े ताकि वो हालात दुनिया के सामने रख लें। तो ये हर चीज में हड़बर्मी करते हैं और इसमें जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, तो और जब कश्मीरी फौज जो है ना तो वो मुजाहरे करते हैं।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। मुरीद खान ने कॉल किया है मियां वाली से। जी जरा मुख्तसर बात कीजिए।
सलाम अलैकुम जनाब। इंडिया जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, 7 लाख फौज जुल्म कर रही है, अंधा कर रही है नौजवानों को, औरतों को बेवा कर रही है, बच्चों को यतीम कर रही है। अब अभी वो क्या करे, कश्मीरी नहते कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है 70 साल।
अच्छा।
से
ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। बाजौर से फजल खान।
फजल जी, मैडम मेरा भारत के मेहमान से सवाल है कि अकवाम मुत्तहिदा के करारदाद में कश्मीर को आजादी नहीं दी गई थी?
जी यही सवाल है आपको। अच्छा मीम अफजल साहब, बहुत सारे सवालात आपसे मंसूब हैं। बुनियादी तौर पे अगर पाकिस्तान ये मुतालबा करे कि इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर तहकीकात की जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इस पर भारत हर वक्त जो है मुखालफत करता रहा है। आप लोगों की हुकूमतें कहती हैं कि इस मामले को बैन अल-अक़वामी सतह पर ना उठाया जाए, इससे तो नज़र आता है कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए
शिमला
समझौते की जो असल रूप थी वो यही थी, इसमें कोई तीसरा फरीक नहीं होगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर के माबेन तरीके से आपस में इस मसले को हल करेंगे। और आपने देखा कि हालात आज कहां तक पहुंच गए। जाहिर है कि आज से 30 साल पहले इस तरह की कोई दहशतगर्दी नहीं थी, बिल्कुल पुरमन तरीके से बातचीत भी होती थी, सब कुछ होता था। जब से दहशतगर्दी ने अपनी जगह ली है हालात खराब हुए हैं। मैं कहीं भी ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि हर जगह पर गलती सिर्फ एक तरफ से है। जब कोई भी इस तरह के दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं तो जवाबी कार्रवाई होती है। मिसाल के तौर पर मैं अभी जो ताज़ा पुलवामा का वाकया हुआ, उसके अंदर अगर 40 जवान किसी बड़े मुल्क के, उनको शहादत हो जाए तो क्या उसका रिएक्शन नहीं होगा? और उसके बाद आज भी
जो साल भर
के 5 लोग जो हैं, कल भी 5 लोग जो हैं इसके अंदर मारे गए, 3 लोग दूसरी तरफ से भी मारे गए जिनका जिक्र किया गया, आपने जिक्र किया। देखिए जो ये वाकया हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसने कबूल की? जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, और ये कहा कि हमने ये किया है। जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में तो नहीं है उसका, उसका तो। और मसूद अजहर तो खुल्ला खुल्ला पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ जो बातें करते हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहाँ कई लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगु करते हैं, इस तरह के इश्ताल अंगेज बयान देते हैं भारत के खिलाफ। तो आप ये समझें कि कोई इस तरह के बयान दे और इस तरफ खामोशी रहे।
मीम अफजल साहब, प्लीज़ आप ज़रा रुकें, क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान चलते हैं जहाँ से दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर हारिस, ये पुलवामा का जो हमला हुआ उसमें हम भारत से भी बात कर रहे हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस के तर्जमान मीम अफजल कह रहे हैं कि जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। मसूद अजहर आप जानते हैं पाकिस्तान में हैं, हाफिज सईद जैसे भी लोग पाकिस्तान में हैं, ऐसे में बताइए कि पाकिस्तान अपना दिफा कैसे कर सकता है इस वाकये के हवाले से। जी ब्रिगेडियर हारिस नवाज गालिबन हमारे साथ हैं लाइन पर, हमारी प्रोड्यूसर मालूम कर रही हैं कि वो कहाँ हैं। जी ब्रिगेडियर हारिस, अच्छा उनको, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, उनको हम दोबारा डायल करते हैं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर शेख शौकत हुसैन कुछ कहना चाह रहे थे।
जी जी,
यू हैव वन
मीम अफजल साहब ने ये कहा कि दहशतगर्दी हो रही और क्या क्या हो रहा है। 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2016 यहाँ अवामी लेवल पर एजुटेशन के जरिए हुकूमत हिंद से कहा गया कि कश्मीर के मसले पर कोई पेशरफ करो और कोई उन्होंने इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। और यही कहा गया कि अगर मास मूवमेंट का, अवामी मजाहमत का कोई जवाब नहीं दिया गया जाए तो नतीजा यही होगा कि लोग मिलिटेंसी की तरफ मायल हो जाएंगे। और वही हुआ और उसी के नतीज सामने। ये जो कहा जा रहा है कि 70 लोग, 50 लोग मर गए पुलवामा में पिछले साल भर से, पुलवामा ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। और उस वक्त यहाँ के भी इंसान हैं, उनके भी जज्बात हैं। फिर शिमला माहिदा को 30 साल हो गए, उसमें तय किया गया था कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, बाहमी तौर पर तय हो जाएगा, लेकिन 30 साल में उस पर कौन सी पेशरफ्त हो गई? जब एक मसले को आप उठा के सर्द खाने में रखेंगे, जो मसला लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, तो नतीजा यही होता है कि फिर रेडिकलाइज भी लोग हो जाते हैं और फिर मिलिटेंसी की तरफ भी मायल हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि कश्मीरियों पर इल्जाम लगाएं या किसी और पर इल्जाम लगा दें, हिंदुस्तान को अपनी तरफ और अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि क्यों मसले कश्मीर को वो सर्द खाने में डाल के ये समझते रहे कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला खुद ही अपनी मौत मार जाएगा।
अच्छा,
इस मसले को हल करने की जानिब कोई पेशरफ क्यों नहीं की गई?
अच्छा,
और दूसरा ये जो अवामी हालात कटे यहाँ होती है मुसलसल हो रही, 2 साल की बच्ची उसकी आंखों की रोशनी ब्लड गैंग से चली गई, उस वक्त हिंदुस्तान में इतनी आवाजें क्यों नहीं उठी? या पिछले साल भर से यहाँ हर रोज जो 5-5, 6-6, 10-10 नौजवान को मारा गया, उस वक्त हिंदुस्तान की आवाजें, हिंदुस्तान से आवाजें क्यों नहीं उठी?
अच्छा जी जी जी, आप हमारे साथ रहें डॉक्टर शेख शौकत हुसैन, इसलिए कि हम पाकिस्तान चलते हैं जहां से दिफाई तजयकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर हारिस, आपको खुश आमदेद।
थैंक यू।
तो हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ ऑल इंडिया कांग्रेस के जो हैं वो तर्जुमान हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान हैं मीम अफजल, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह का पुलवामा का हमला हुआ तो जैश मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। मसूद अजहर जो जैश मोहम्मद के चीफ हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हाफिज सईद भी वहाँ हैं। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान अपना दिफा कैसे कर सकता है इस हवाले से?
देखें, बेसिकली बात यह है कि ये इनसे ये पूछा जाए कि वहाँ पर पाकिस्तान को क्या जरूरत है, इसका फायदा किसको है। पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस आई हुई है, उस वक्त पाकिस्तान सारी जो हुकूमत है वो उनके उसमें लगी हुई है वेलकम करने के अंदर। और सेकंड बात ये है कि ये इतना बड़ा 200 केजी का किलोग्राम का एक्सप्लोसिव क्या पाकिस्तान से वहां पर गया है? जिस तरीके से अभी भी टीवी पे चल रहे हैं उनके जो कमांडर जनरल साहब हैं, तो एक पावर्ड इंसान है, वो ये बात कर रहे हैं कि जी माओं को बोलो कि बच्चों के अपने हथियार बंद कर लें वरना मौत उनका अंजाम है। ये कश्मीर के साथ आप जुल्म करते हैं। जब आप ऐसी बात करते हैं कि माओं बहनों बच्चों बूढ़ों को आप पेलिकन से लाइन करते हैं, आप शहीद करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। जब भी आप जुल्म करेंगे आप इसी तरीके से यही अंजाम होगा। सेकंड बात यह है कि जैसे मोहब्बत का उन्होंने ड्रामा किया, ये खुद कहीं से उसकी किसी को खड़ा किया बात किया। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने क्या दो घंटे पहले पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर दी? क्या इन्होंने कोई एक भी एविडेंस दी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा है एक्शनेबल एविडेंस से हम उसी वक्त एक्शन करेंगे। आप दहशतगर्दी बात करना चाहते हैं, हम दहशतगर्दी में बात करते हैं, आप हमारे पैक से बात करें। अगर इन हालात में उनका सिर्फ इलेक्शन सामने आ रहा है, ये चाहते ये हैं कि दुनिया की तवज्जो हट जाए, पाकिस्तान को शो करेंगे जहाँ पर टेररिज्म होता है, सेफ जगह नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, पाकिस्तान को कामयाबी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फिर आप ये जो अटैक हमले सर्जिकल स्ट्राइक, आप फौज फाइटिंग आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की 25 साल से बैटल हार्डन फौज है, उन्होंने एक सिंगल प्रोफेशनल तरीके से पूरी टेररिज्म पाकिस्तान को खत्म कर दिया है। आपकी फौज सिर्फ कश्मीर नाते बच्चों को औरतों को बूढ़ों को शहीद करती है, ब्लाइंड करती है, प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बातें करते हैं, क्या ये हुकूमत होती है? क्या ये तरीका होता है कि एक आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा?
इसका जवाब हम लेते हैं मीम अफजल साहब से। मीम अफजल साहब जरा सा आप इस पे जवाब दीजिए। मीम अफजल साहब, आपने हमारे माहिरीन को सुना, उनका ये कहना है जितना जुल्म बढ़ेगा भारतीय अफवाज की तरफ से तो जाहिर है मज़ाहमत कारी होगी और कश्मीरियों को फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान से लोग आकर उनको उकसाएं। वो एक खुदकुश जो तहरीक है, वो खुदरो तहरीक, वो अपने आप बन रही है। आप क्या कहेंगे?
इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का पहले हाथ था और अब तहरीक खुद रो हो गई है
पाकिस्तान का, बिल्कुल
ऐसा मैं आपकी बात से शायद अंदाजा लगा रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है कि आप ये कहें कि वहाँ पर अगर जुल्म बढ़ेगा तो ये तहरीक जो है वो और बढ़ेगी। तो ये तो बड़ा मामला जो है, बहुत देखना पड़ेगा इसको अच्छी तरह से कि जुल्म किधर से हो रहा है। मैं एक बात बता दूँ कि हम लोग यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई कश्मीर के लिए लड़ते हैं। जो लोग हिंदुस्तानी मीडिया को पढ़ते हैं, उर्दू मीडिया को जानते हैं, तो उसमें देखते होंगे आप कि हम लोग यहाँ पर कश्मीर के अंदर कभी कोई भी ऐसी, जैसे जब एक बार काफ़ी बैलेट पुलट गन चली थी जिसके अंदर छर्रे इस्तेमाल हुए थे, पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ बाकायदा एक माहौल बना था, पूरे हिंदुस्तान में उसकी मजम्मत की गई थी। दूसरी बात ये कि ये वही फौज है जो 3.5 साल पहले, जब कश्मीर के अंदर 4 साल पहले सैलाब आया था, तो कश्मीर का बच्चा बच्चा इसी फौज की तारीफ कर रहा था, जिस तरह से उनकी जानें बचाई गई थी, जिस तरह उनके घर बचाए गए, जिस तरह उनका सामान बचाया गया, जिस तरह सबसे बढ़कर के उनको जो है कश्मीर में फौज ने जो है उनको पूरी राहत पहुंचाने का काम किया। तो यही फौज थी जिसको लोग गले लगा रहे थे, फूल पहना रहे थे।
लेकिन अभी ऐसा नहीं है,
खराब हो गया क्या?
अभी ऐसा नहीं है और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन ने इस बात को वजाहत के साथ की है। आप हमारे साथ रहें, हम कुछ कॉल लेते हैं। कॉलर जरा मुख्तसर बात कीजिए। सूबेदार कामरान ने कॉल किया है कश्मीर से। जी जनाब बात कीजिए।
हेलो।
जी जी बात कीजिए।
अस्सलाम
वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम।
जी जी
मेरा सर सवाल मुख्तसर सा है। ये जो साथी साहब हैं हिंदुस्तान से बोल रहे हैं, ये अपने गुस्से में बात कर रहे हैं, गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। और कश्मीर कश्मीरियों का है, आप टूट अंग जो कहते हैं वो किस मुंह से?
अच्छा 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 ठीक है, आपके आपके कॉल करने का शुक्रिया। बाजौर से रहमान जी बात कीजिए। जी बात कीजिए। अच्छा आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। अफजल ने कॉल किया है चकवाल से। जी जनाब बात कीजिए।
हेलो।
जी जी बात कीजिए। अच्छा उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। और सैयद हबीब हुसैन शाह रावला कोट से।
जी सवाल अलैकुम, मैं चूंकि कालर हूँ बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर है कुछ लोग मफाद प्रस्त जो दोनों तरफ फायदा उठाते हैं और वो आगे कश्मीरियों को मरवाते हैं और कश्मीरियों के रास्ते नहीं खोले जाते हैं। तो इस तरह जो आज़ादी की बात की जाती है, कोई मुसलमान मुल्क मुझे आज़ाद नहीं नजर आता है, खुद हमारा मक्का और मदीना भी आज़ाद नहीं है। तो मैं कश्मीर अमन पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं अपील करता हूँ कि किसी भी तरह की कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और मामला जो है वो पूरा अमन तौर पर तय होने चाहिए और कश्मीरी के रास्ते खोलने चाहिए ताकि ये दोनों तरफ जाके जजमेंट करें कि किधर क्या फैसला कर रहा हमने, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन ने इजाजत दी है कि कश्मीरी या हिंदुस्तान के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें, तो ये फैसला हमने कर रहा है और हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं और बात करते हैं, उनकी बात भी हमें भी देखना चाहिए, जाना चाहिए।
अच्छा ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर शेख शौकत हुसैन। जाने से पहले आप जरा सा इस पे तबसरा कीजिए कि भारतीय जो अफवाज थी श्रीनगर में, क्या वो मकबूल रही है माजी में, जैसे मीम अफजल साहब ने कहा?
अफजल साहब ने जो ये कहा कि सैलाब में पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया, हमारे खुद यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे फंस गए थे उस सैलाब में और उस वक्त ये हाल था कि फौज वहाँ थी लेकिन टूरिस्टों को वकेट कर रही थी और उन बच्चों की मदद उन्होंने नहीं की।
बिल्कुल गलत,
यहाँ मजदूर और बहुत सारे और लोग बिहार से थे उनको बचाने में लगे हुए थे, आम लोगों को मदद नहीं की।
अच्छा,
हमेशा ये रहा है कि आम कश्मीरी ने तो फौज का वही चेहरा देखा है कि छरे उन पर चलाए गए, पेलेट गन और पावा गन चलाए गए, उनको बहुत सारी जगहों पर जेलों में रखा जाता है और उन पर पीएसए 30-30 मरतबा लगाया जाता है, इसके अलावा और कोई चेहरा हमारे सामने नहीं आया, या गाड़ियों से बांध के शील्ड के बतौर इस्तेमाल किया जाता है। चेहरा अगर बेहतर करना है तो उसके मौके बहुत थे, ये कश्मीरी तो कभी बंदूक नहीं उठाई है उन्होंने तारीख में, मजबूर हो गए तंग आमद बजंग आमद, यही सिचुएशन पैदा की गई कश्मीरी के लिए।
अच्छा।
और कल जितेंद्र सिंह जो हिंदुस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पुलवामा पर तबसरा करते हुए कहा गया कि जो कश्मीर में मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टियां वो भी हार सेलेक्शन के जरिए इकतदार में आती, ये उन्होंने खुद अपने बयान में कहा।
अच्छा।
उन्ही हार सेलेक्शन को डंडूरे दुनिया भर में पीटते हैं, ये कहते हैं कि कश्मीरी ने खुद अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट किया और जितेंद्र साहब ने उसका खुद पोल खोल दिया कि इलेक्शन कैसे होते हैं। तो अपने जो कश्मीरियों के साथ इनका जो वार्ताव रहा उस पर भी इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए।
जी जी मीम अफजल साहब, एक आप जरूर जवाब दीजिए लेकिन ये भी बताइए, हम जानते हैं कि बीजेपी जो है वो इंतखाबात के लिए जा रही है और पाकिस्तान को अब खतरा है कि बगैर किसी तहकीकात के भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में कुछ बात कीजिए।
देखिए मैं इसको कोई बहुत अहम बात नहीं मानता हूँ, ये बात हर बार उड़ी के हमला जब हुआ था उस वक्त भी, 26/11 भी जब हुआ था जब भी, ऐसे तकरीबन 18 वाकयात जो हैं पिछले बीजेपी के दौर में हो चुके हैं और हर बार बहुत कुछ कहा गया, लेकिन दोनों मुल्क के जो खतरा हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जंग का मतलब क्या होता है। आज इमरान खान साहब ने भी ये बात कही, दूसरी तरफ हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने कभी ऐसी बात नहीं की, हम उनके शदीद मुखालिफ हैं सियासी तौर पर, उसके बावजूद हम ये बात कहेंगे कि उन्होंने जंग के ताल्लुक से कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने ये कहा जवाब जरूर दिया जाएगा। जाहिर है कि अगर ये महसूस किया जाता है या हमारे पास कुछ ऐसे जो देख सबूत की बात करते हैं 26/11 के बारे में, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए सबूत के, यहाँ तक कि हमने टेप करते हुए बाकायदा बातचीत करते हुए गाइड करते हुए उनके जो गुफ्तगू है वो सब रिकॉर्ड है और वो सब हमने पेश की, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने सुनवाई नहीं कि आ गया, हमें सबूत ही नहीं दिएगा, एक जुमला ये बोल देना काफ़ी होता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात ये कश्मीर के ताल्लुक से अभी मेरे भाई शौकत फरमा रहे थे, मैं उनको ये बता दूँ कि कश्मीर के इलेक्शन के अंदर मैं खुद इंचार्ज था कांग्रेस पार्टी का और मैं खुद कैंपेन में मौजूद था, एक एक छोटे छोटे से गांव के अंदर 6,000-7,000 लोग आ रहे थे इलेक्शन की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और 70% बिल्कुल गलत है, ये एक जमाने में इल्जाम पहले होता था जब लोग कम हिस्सा लेते थे, लेकिन आज तो कश्मीर के आवाम ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इलेक्शन के अंदर, और अगर ये सब बेईमानी पर मुलहम होता तो फिर वादी के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, हमें तो सीटें मिली वहां पर, लेकिन बीजेपी को नहीं मिली कोई सीट। इसी तरह जम्मू के अंदर हमको काफी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की पॉलिसी के नतीजे में वहां पर ज्यादा वोट हमसे ज्यादा सीटें ले गई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बगैर सोचे समझे जो इल्जाम तराशी कुछ लोग कश्मीर में करते हैं वो मुनासिब नहीं है। और जो फौज की बात कही इन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद वहाँ रात के कामों के लिए देख रहा था, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, मैं यहाँ से एड लेकर के गया कश्मीर के अंदर। मेरी बेटी ने अपने जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर वो तालिबे ली, उन्होंने यहाँ से 16 ट्रक सामान जो है वो भेजने का काम किया और हमने देखा कि फौज वहाँ पर किस तरह से काम कर रही थी। ये कहना बिल्कुल झूठ है कि वो सिर्फ टूरिस्टों को बचा रहे थे, फौज ने वहाँ एक आम आदमी की मदद की है और आम लोगों उसकी तारीफ कर रहे थे हमने।
लेकिन 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 मीम अफजल साहब, आप जानते हैं कि फौज जो है वो अपनी जान बचाने में नाकाम रही है, और जिस और आपने खुद ही एतराफ किया कि पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा तादाद में फौजी मारे गए हैं, इसकी भी तो कोई वजह है। जी जी,
आपके आपको बता नहीं रहे, ये हमारा सवाल है बहुत बड़ा जो हम यहाँ उठाते हैं।
जी जी, और इसका इलाज क्या है?
अब देखिए, इलाज जो है कि मैं समझता हूँ कि बहुत अपने विजन को बड़ा करने की जरूरत है दोनों मुल्क की लीडरशिप को और खास तौर पर पाकिस्तान को। देखिए, हमारे यहाँ एक आम तासुर ये है, चाहे मीडिया हो चाहे आम लोग हो, कि वहाँ पर ISI कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल जो हुकूमत होती है, सियासी तौर पर जो लोग हैं हुक्मरा हैं उनकी कुछ चलती ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही कहा जाता था, आज इमरान खान के ताल्लुक से भी यही कहा जा रहा है कि वो तो फौज के लाए हुए हैं, फौज के जरिए से उनको इख्तियार सौंपा गया है।
जी जी, ब्रिगेडियर हारिस नवाज कुछ कहना चाह रहे हैं जवाबन। जी जी मीम अफजल साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज, जी जनाब आप बात कीजिए।
इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसी बातें करते हैं। इनके किसी हिंदू स्टेट में इनकी फौज ने
ब्रिगेडियर हारिस नवाज की जो है लाइन ड्रॉप हो गई बाहर। कैफ, ये कश्मीर का मामला इतना बड़ा है कि मेरा ख्याल है कि इतनी सी देर हम इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। हम डॉक्टर शेख जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें।
एक बात जो मीम अफजल साहब अक्सर ये कहते हैं ना कि वो हम लोग बहुत हमदर्दी कश्मीरी की तरफ रखते हैं, जो कश्मीरी तालिब इल्मों के साथ इस वक्त उत्तराखंड में पहली में
हमारी
और दीगर जगहों पर हमले हो रहे हैं,
आजादी के साथ
उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा और न इनकी पार्टी तवज्जो कर रही, बल्कि वहाँ कुछ सरदार लोग उनकी मदद को आ गए और बहुत सारे कश्मीरी लड़कों की जान वहां खुदा खुदा करके बच गई। तो ये कौन सा तरीका है कि यहाँ अगर कोई एक्शन होता है उसका खमियाजा वहाँ कश्मीर की मासूम तालिबे इल्मों को उठाना पड़े।
इसको कंडेम किया है और कहा है कि ऐसा होगा तो हम इसके लिए खिलाफ को मैदान में उतरेंगे अगर कश्मीरियों को कहीं भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
हाँ, जो गाड़ियां जम्मू में जलाई गई और दूसरी जगहों पर जो कश्मीरी तालिबे इल्मों के साथ था वहाँ कहाँ थी कांग्रेस पार्टी।
बहरहाल ये मसला ऐसा है कि ये ख़त्म नहीं होगा, हमारा राउंड टेबल भी जारी है, लेकिन हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। हमारे साथ है कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन जो श्रीनगर में होते हैं, जबकि नई दिल्ली से थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक तर्जुमान मीम अफजल। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
इमरान, तुम उर्दू में ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प फीचर्स के लिए किस वेबसाइट पे जाते हो?
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू वेबसाइट www.urduvoa.com पर और कहा।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में भारतीय अफवाज पर जो खुदकुश हमला हुआ और जिसकी वजह से कई भारतीय फौजी हलाक हुए, इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सख्त कशीदगी हो गई है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर तौकीर गिलानी ने, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर हैं, और उनके साथ हैं यहाँ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में फ्रेडरिक एस पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज के डीन आदिल नजम। हम आप दोनों हजरात को सबसे पहले पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो सुनाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहकीकात करने के लिए तैयार है अगर उनकी जमीन को इस्तेमाल किया गया है इस कश्मीरी हमले में। आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
मंगल को हमले पर अपने पहले बाज़ाब्ता रद्द अमल में इमरान खान ने कहा कि भारत की हुकूमत ने हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने से पहले ये भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान के बकौल मुआमलात बेहतर हो रहे हैं तो ऐसे वक्त में इस्लामाबाद क्यों किसी तनाज़े में उलझना चाहेगा। मंगल की दोपहर मुल्क के सरकारी टीवी चैनल पर नशर होने वाले अपने रिकॉर्ड शुदा बयान में इमरान खान का कहना था कि वो ये बयान भारत की क़यादत के लिए दे रहे हैं जिसने उन बगैर सोचे समझे और बगैर किसी सबूत के वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया है। तहम वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अगर भारत के पास कोई काबिले अमल इंटेलिजेंस है तो वो पाकिस्तान को दे जिस पर उनके बकौल कार्रवाई की जाएगी।
मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है।
इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते का बड़ा मसला है और पाकिस्तान इस मसले पर भारत से बात करने के लिए तैयार है।
जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो।
तहम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इसके साथ खबरदार किया कि अगर भारत ये समझता है कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उनके बकौल पाकिस्तान इसका फौरी जवाब देगा। बेलकवामी अमूर के माहिर हुमा बकाई ने मंगल को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान इस बात का मज़हर है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है।
उन्होंने बावजूद तमाम तर उन तकलीफदेह बातों की जो इंडिया की तरफ से की गई, फिर भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ डायलॉग, विंडो ऑफ नेगोशिएशंस को ओपन रखा है। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि ये नई बात नहीं, एक साल पहले तहमीना जंजुआ जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा हम इंडिया से बिल्कुल बात करना चाहते हैं बशमूल टेररिज्म, बशमूल कश्मीर, हर इशू।
दूसरी तरफ हिजबे मुखालिफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनमा और सेनेट की खारजा अमूर की कमेटी के रुकन शहरी रहमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पुलवामा के हमले को अपनी सियासी साख बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत में कई हलके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई अहम ओहदेदार पाकिस्तान को वाकये का जिम्मेदार ठहराते हुए इस्लामाबाद के खिलाफ सख्त इकदाम का इंदिया दे चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नाम एक खत में पुलवामा हमले के बाद भारतीय क़यादत के बयानात के तनाजुर में पैदा होने वाली कशीदगी को कम करने के लिए अक़वामे मुत्तहिदा से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और हम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह डॉक्टर तौकीर गिलानी से इब्तिदा करते हैं। डॉक्टर गिलानी, आप बताइए कि ये जो खुदकुश हमलावर है आदिल दार, बताया जाता है कि मकामी मज़ाहमतकार है और गालिबन उन्होंने अपने ही वसाइल से ये जो असलहा है वो जमा किया था, लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जहश मोहम्मद ने इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की। तो ये जो दो मुतजाद बातें आ रही हैं, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो मज़ाहमत हो रही है कश्मीर में वो किस हद तक मकामी है या फिर उसमें पाकिस्तान का हाथ है?
जी जी, देखिए ये बातें तो हर अब एक इल्ज़ाम तराशी का जो सिलसिला है वो तो चलता रहेगा, लेकिन एक फैक्चुअली एक वाकया हुआ है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पे कैजुअलिटीज हुई हैं और एक तंजीम ने जिम्मेदारी भी कबूल की है। तो अगर हम चीज़ों को उलझाने के बजाय इसको सीधा सीधा ही रखें तो ये तो तय हो गया कि एक जिम्मेदार एक तंजीम जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर रही है और वो जो लड़का इसमें जिसने ये धमाका किया वो मकामी है और अस्करियत जो है वो काफी हद तक, यानी मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता जो कुछ अर्सा है उसके दौरान तकरीबन 90-95% जो भी अस्करी वाकयात हुए हैं वो मकामी ही ये हैं। और हथियार होना का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इतनी बड़ी तादाद में वो बारूद वगैरह वो मकामी कैसे तैयार करेगा। ताहम ये जरूर है कि मैं समझता हूँ कि ये जो टेंशन पैदा हो रही है ये इन दोनों मुल्कों को इस पे बड़ा संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। और कश्मीर को अगर जो भी ताकतें यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं अगर वो इसी तरह रखना चाहती हैं, वो चाहे उनके जो है वो बेसिस पाकिस्तान में हों, कश्मीर में हों, या बैरून पाकिस्तान व कश्मीर भी हों, अफगानिस्तान में भी हो सकते हैं, अरब में भी हो सकते हैं, चूंकि ये अब ये जो फिनोमेना है
ताइश का। लेकिन ये बात बताइए डॉक्टर तौकीर, ये
लोग सारे
डॉक्टर तौकीर ये बताइए, जो असल सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की रियासत किस हद तक जैश मोहम्मद की सरपरस्ती करती है।
जी मेरा ख्याल है माजी में तो सरपरस्ती करते रहे हैं, अभी जैश मोहम्मद नाम से पाकिस्तान में चूंकि तंजीम बैन है तो इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते कि जैश मोहम्मद पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम कर रही है, लेकिन लोग बेशुमार हैं उस नुक्ता नजर के उन फिरकों के लोग हैं जो ये इन कामों में मसरूफ हैं और वो कर रहे हैं काम, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अगर पाकिस्तान ये इमरान खान के बयान के बाद अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो इस तरह से सारी तहकीकात करने के लिए तैयार है और हिंदुस्तान सबूत दे, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को आगे बढ़कर सबूत देने चाहिए और पाकिस्तान पे जो इसका बर्डन है वो शिफ्ट करना चाहिए।
अच्छा इस वक्त हम यहाँ अमरीका लौटते हैं जहाँ बॉस्टन यूनिवर्सिटी में फ्रेडरिक पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज के डीन आदिल नजम हमारे साथ हैं। आदिल नजम आप बताइए, ये जो हमला हुआ है इसकी टाइमिंग के हवाले से आप इसकी अहमियत किस तरह देखते हैं? आप जानते हैं कि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, बीजेपी की हुकूमत जो है वो काफ़ी सख्त गिर मौक़िफ रखती है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन साथ साथ ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान तालिबान को मेज़ पर लाने की एक कोशिश कर रहा है, तो ये जो हमला हुआ है इसकी सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं टाइमिंग की?
पहली बात तो ये जी कि आप अगर सोचें कोई ऐसा टाइम ऐसा हो नहीं सकता जिसमें इतनी बड़ा वाकया हो, इतनी खौफनाक हरकत हो और उसकी टाइमिंग सिग्निफिकेंट ना हो। अगर इलेक्शन ना हो रहे होते तब भी वो सिग्निफिकेंट होता, अगर तालिबान से बात ना हो रही होती है अमरीका की तब भी वो सिग्निफिकेंट होता। तो जिस वक्त भी ये होता, इस नौइयत का जब वाकया होता है तो उसके आसपास जो चीजें हो रही होती हैं उनकी वजह से उसकी सिग्निफिकेंस जरूर बढ़ जाती है। आपने यकीनन सही कहा कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अमरीका के उन पर इसका शेडो पड़ेगा। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा कि जो इंडिया में इलेक्शन होने वाली है उस पे इसका शेडो पड़ेगा, इस लिहाज से भी पड़ेगा कि मोदी साहब की जो हुकूमत है उनके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे क्योंकि अब जो है एक ये इलेक्शन इशू भी बनेगा। और इसी तरह तालिबान के साथ जो बात है, अगर पाकिस्तान की कशीदगी भारत से बढ़ जाती है तो जो भी छोटा मोटा या बड़ा रोल पाकिस्तान ने अदा करना है उस गुफ्तगू में उस पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में इस मसले को सिर्फ उन हवालों से नहीं देखना चाहिए। एक जो बड़ी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम जब भी बात करते हैं, अभी भी जो बात हुई उसमें हम इसको एकदम सिर्फ पाकिस्तान और अमेरिका का मसला बन जाता है, एक और भी फरीक है यहाँ जो मेरे ख्याल में नीवे नीवे वैसे ही खामोश रह जाता है और वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का तवील तरीन पीस ऑपरेशन जो है वो कश्मीर में है और हम सब जानते हैं कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन 70 साल से आपके यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, इसीलिए बैठना चाहिए कि ऐसे मौके पर मेरे ख्याल में उनको मुहर्रिक होना चाहिए और बाकी जो अकवाम है उन्हें भी मुहर्रिक होना चाहिए, वरना खसूसन ये ट्विटर के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में जो हाइप है और जो गर्मी है वो इतनी बढ़ जाती है कि जो सियासतदान दोनों ममालिक में है, चाहे सर्टनली मोदी साहब और मेरे ख्याल में इमरान साहब, उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस बड़ी कम हो जाती है क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो शोर है, चाहे वो खुद बनवाए या वो वैसे आए, وہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دوسری باقی دنیا اور خصوصاً یونائیٹڈ نیشنز کا کیا رول ہے.
پروفیسر عادل, آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کے ترجمان میم افضل تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس وقت بھارت کے اندر اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ اتنے بھارتی کمانڈرز کیسے مارے گئے ہیں کشمیر میں. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ پچھلے 4 سالوں میں سب سے بڑی تعداد میں بھارتی افواج کے لوگ مارے گئے. اس واقعے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں, بھارت کی کے طرز میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
کس لحاظ سے, پاکستان کی طرف,
کشمیر کی طرف؟
مجھے تو ڈر یہ ہے کہ اگر تبدیلی آئے گی تو وہ اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ کسی بھی اس قسم کے واقعے کے بعد کہیں بھی کسی بھی ملک میں ایک وینجنس کی فضا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور جو بھی آپ کی سب سخت ترین جو قوتیں ہوتی ہیں, جو موسٹ ہاکش آوازیں ہوتی ہیں, ان کو ایک طرح سے ایک تقویت ملتی ہے. اور خصوصاً الیکشن کے سال میں, الیکشن سے پہلے جو سپیس ہے, اگر کوئی ایسی حکومت ہو بھی جو احتیاط سے کام کرنا چاہے, جو مسئلوں کو حل کرنا چاہے, اگر ایسی ہوتی بھی, جو میرے خیال میں نہیں ہے اس وقت بھارت میں, اگر ہوتی بھی تو اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا.
ڈاکٹر توقیر, آپ بتائیں, آپ خود جانتے ہیں کہ یہ جو حملہور تھے وہ مقامی کشمیری تھے, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اسلحہ کیسے حاصل کیا. کیا اگر بھارت نے اس کے باوجود کوئی قدم اٹھایا تو اسے جو ہے وہ ایک سفارتی ناکامی ہوگی کہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی قدم اٹھایا پاکستان کے خلاف؟
میں نہیں سمجھتا کہ اب جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اس میں اگر ہندوستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کوئی قدم اٹھائے گا تو وہ کسی سفارتی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرے گا. اور اس مسئلے پہ ہندوستان کا آلریڈی جو پروپیگنڈا ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اور اس کا انٹرنیشنلی ڈپلومیٹک جو اس کا کام ہے وہ اتنا ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کی کاروائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ آسانی سے آگے بڑھ جائے گا اور اس کو کوئی بڑے انٹرنیشنل پریشر کا سامنا نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ کاروائی اس طرح کی کوئی کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا, اور اس کے بھی ریپرکشنز ہوں گے. اور اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جو بھی کاروائی کرنی چاہیے وہ پاکستان پہ پریشر ڈال کے, تو یہ جو اس حملے میں اگر کوئی سازش ہے یا پاکستان کے, یا پاکستان کے اندر سے کسی تنظیم کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں جو ہیں بھی, تو اس پہ پریشر ڈال کے تو ہندوسان زیادہ گین کر سکتا ہے بنسبت کوئی فوجی کاروائی کر کے, جس کا لامالا سیویلینز جو ہیں اس میں خطرے میں آ جائیں گے دونوں ملکوں کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی. اچھی نظر سے شاید نہ دیکھا جا سکے.
پروفیسر عادل, ہمارے پاس 1 منٹ ہیں, لیکن آپ بتائیں, محمد بن سلمان پاکستان سے اس وقت جو ہیں بھارت گئے ہیں, اور انہوں نے بھی کہا ہے عادل جبیر نے کہ ہم کوئی سفارتی کوششیں کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح ہو, کچھ دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ نکل سکتا؟
آئی ہوپ ہو جائے, لیکن مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے. لیکن کم از کم دیکھیں, سعودی کچھ کریں نہ کریں, ایک طرح سے بھارت کی حکومت کو ایک موقع یہ ہے کہ وہ اب اگر وہ ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیں, اف دے وانٹ ٹو, تو اب ان کے پاس ایک کور ہے کہ جناب یہ آئے تھے, یہ بھی ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بھی ہم سے کہا ہم چلیں کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عالمی جو قوتیں ہیں اور خصوصاً یونائیٹڈ نیشنز, ان کا رول بنتا ہے. جتنے سوال آپ پوچھ رہی ہیں, یا پاکستان میں میڈیا پوچھ رہا ہے یا انڈیا میں میڈیا پوچھ رہا ہے, ان کا کوئی جواب کریڈیبل نہیں ہے اگر وہ بھارت یا پاکستان.
بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ تھے پروفیسر عادل نجم یہاں بوسٹن سے, جبکہ پاکستان سے تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی. اس پروگرام کے انجینئر تھے نک آئیونوف, پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حالیہ طور پر بڑھتے ہوئے یہود مخالف بیانات یہودی برادری کے لیے مرکزی مسئلے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیتن یاہو نے یہ بات یروشلم میں یورپی ممالک کے سربراہان سے ملاقات سے ایک روز قبل پیر کے دن کہی۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتی ساہو کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
پیرس میں زرد جیکٹ پہن کر احتجاج کرنے والے مظاہرین کے ایک گروپ نے ان کے قریب سے گزرنے والے فرانس کے ایک یہودی فلسفی الین فن کیل کروٹ سے بدکلامی کی، جس کے نتیجے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فوری طور پر اس واقعے کی مذمت کی، تاہم فن کیل کروٹ کا کہنا تھا کہ کسی نے بھی ان کے یہودی ہونے کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں کسا، بلکہ بدکلامی کرنے والا شخص ایک مسلمان انتہا پسند تھا۔ ان کا کہنا تھا،
Les Palestiniens, c'est ça, nous sommes racistes du fait de notre souci d'Israël, devenu aux yeux de certains, état criminel et même génocidaire. Et donc,
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نسل پرست ہیں کیونکہ ہم اسرائیل کے بارے میں حساس ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں مجرم سمجھتے ہیں اور قتل عام کرنے والے بھی۔ ہم اس قسم کی نفرت سے نمٹنے کی اہلیت کم ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ اچھے شعور سے بھرپور ہے۔ آج کی یہود دشمنی نسل پرستی کے خلاف ہے۔ فرانس کے ایک تاریخ دان ونسنٹ ڈوکلرٹ نے اس واقعے کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس تصور سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،
It is important to stop saying, oh no, it's not anti-Semitic because dirty Jew wasn't said. On top of that, the aggressors know full well that saying dirty
یہ اہم ہے کہ ایسی بات کرنے سے روکا جائے کہ نہیں، یہ یہود مخالف نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہودی غلیظ ہوتے ہیں۔ مزید برآں، یہود مخالف کلمات کہنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو غلیظ کہنا قانون کے خلاف ہے، تاہم صہیونیت کو غلیظ کہنا خلاف قانون نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو مکمل طور پر واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ یہود مخالفت کا ایک غیر معمولی کیس ہے۔ یورپی ممالک یہود مخالف جذبات اور ہولوکاسٹ کی تاریخ کے حوالے سے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں، اور کچھ ممالک تو اس الزام کی مجموعی حیثیت کو مسترد کرتے ہیں۔ گزشتہ برس پولینڈ نے ہولوکاسٹ کے دوران کی گئی زیادتیوں کے حوالے سے کسی ملک کو مجموعی طور پر الزام دینے کو خلاف قانون قرار دے دیا تھا۔ نازیوں کے دور میں قائم کیے گئے حراستی کیمپوں کو پولینڈ کے موت کے کیمپ قرار دینے پر قانون کے مطابق سزا مقرر کر دی گئی ہے، تاہم اسرائیل میں بہت سے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے قائم مقام وزیر خارجہ نے اتوار کے روز ٹیلی ویژن پر تقریر کرتے ہوئے سابق اسرائیلی وزیر اعظم یتزک شامیر کی بات دہرائی، جس میں انہوں نے کہا تھا، پولینڈ کے لوگ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ یہود مخالفت کو پیتے ہیں۔ اس بیان پر پولینڈ نے فوری طور پر منگل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی سربراہ ملاقات منسوخ کر دی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم میٹیاس موراویکی کہتے ہیں،
The remarks that were made by the acting minister of foreign affairs, Mr. Katz, are absolutely unacceptable.
اسرائیلی قائم مقام وزیر خارجہ کاٹس کی طرف سے دیا گیا بیان مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، نہ صرف سفارتی زبان کے حوالے سے بلکہ میرے لیے یہ عوامی سطح پر بھی بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موجود یہودیوں کے لیے یہود مخالف رویہ مرکزی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اب یہ نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے،
The malicious efforts to demonize the Jewish state deny the Jewish people and only the Jewish people the right to self-determination in our ancestral homeland.
یہودی مملکت کی تذلیل کی کوششیں یہودی لوگوں اور صرف یہودی لوگوں کے لیے ان کے آبائی وطن کے حوالے سے حق خود ارادیت کی نفی کرتی ہیں۔ میرے خیال میں ہم صاف اور واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صہیونیت کی مخالفت یہود مخالفت کی نئی شکل ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ مخالفت کس طرف سے آ رہی ہے، چاہے یہ مشرق کی طرف سے ہو۔ تاہم مشرق میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم ایشیا کی بات کر سکتے ہیں۔ ایسا مشرق وسطیٰ کے بعض مقامات میں ہو رہا ہے، اور یہ مغرب میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہود مخالفت اور نفرت پر مبنی بیانات کو بہت سے یورپی ممالک میں خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے، تاہم یہودی برادریوں پر حملے اکثر ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر فرانس میں جہاں مسلمانوں کی آبادی یورپ بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/ VOA.